नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात में उत्कृष्टता हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। नागरिकों से भारत को वैश्विक व्यापार और ज्ञान का केंद्र बनाने का आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भाजपा सांसदों की कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। एनडीए के सहयोगी दलों के सांसद भी इसमें शामिल होंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, रोजगार सृजन सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख स्तंभ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में 1 पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में लाखों युवा सड़कों पर उतरे। और मौसम विभाग ने आज उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से भारत को ज्ञान और व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ईपीसी के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक आत्मनिर्भर तथा निर्यात में उत्कृष्ट बनाने की आवश्यकता है।
पिछले 7 दशकों के दौरान भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में काफी बदलाव हुआ है। बदलाव के ये प्रक्रिया आपको जारी रखनी है तथा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ भारत की अर्थव्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत बनाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना काल में रखी गई आत्मनिर्भर भारत की नींव लगातार मजबूत हो रही है।
कोविड महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया। कोविड महामारी से उत्पन्न हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करके भारत ने जिस आत्मविश्वास का परिचय दिया और राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का एक प्रेरक उदाहरण है।
राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व व्यापार व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में हो रहे बदलावों के कारण ईपीसी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि ईपीसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारतीय उत्पादकों के बीच एक सेतु का काम करता है। उन्होंने ईपीसी के सभी हितधारकों से देश में उपलब्ध प्रतिभा और ऊर्जा के लिए एक मंच प्रदान कर भारत को अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा और एनडीए सांसदों की कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। संसद परिसर के बाल योगी सभागार में कल से शुरू हुई 2 दिवसीय कार्यशाला में वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सांसद कार्यशाला जैसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक दूसरे से सीखने और लोगों की बेहतर सेवा करने पर विचार विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्यशाला के पहले दिन बताया कि प्रधानमंत्री सभी प्रशिक्षण सत्रों के दौरान मौजूद थे।
It's a very systematic and as always BJP's culture is extremely professional. Our MPs have whole day from this morning 8 o'clock attended the training session and we are always like that. Our colleagues, the MPs from other NDA parties will also join us and Honorable Prime Minister will also make the concluding remarks.
कार्यशाला के पहले दिन भाजपा संसदीय दल ने सर्वसम्मति से अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधारों पर एक प्रस्ताव पारित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें प्रधानमंत्री को इस साहसिक और लोक कल्याणकारी कदम के लिए बधाई दी गई और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। अधिक सक्षम और जनहितैषी अर्थव्यवस्था बनाने का श्री मोदी का ये सपना 3 सितंबर को साकार हुआ जब जीएसटी परिषद ने आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को तर्क संगत बनाने की मंजूरी दी। आज हम वस्त्र उद्योग के लिए किए गए सुधारों पर नजर डालेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आम आदमी पर केंद्रित जीएसटी सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे।
कपड़ा क्षेत्र में जीएसटी दरों में बदलाव से ढांचे में गड़बड़ियां दूर होंगी, लागत घटेगी, मांग बढ़ेगी, निर्यात को समर्थन मिलेगा और नौकरियां बनी रहेंगी। कृत्रिम रेशों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं कृत्रिम सूत पर इसे 12% से घटाकर 5% किया गया है। इससे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की समस्या दूर होगी, यानी अब रेशा, सूत और कपड़े की दरें एक जैसी होंगी। इससे निर्माताओं पर कार्यशील पूंजी का बोझ भी कम होगा। इसके अलावा किफायती कपड़े और सस्ते होंगे, जिससे विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। यह सुधार छोटे शहरों और ग्रामीण बाजारों में मांग को फिर से बढ़ावा देगा। हस्तशिल्प वस्तुएं, हथकरघा की सूती दरियां, कालीन और फर्श पर बिछाए जाने वाले कवर अब केवल 5% जीएसटी के दायरे में आएंगे, जो पहले 12% के दायरे में थे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि अब कपड़ा क्षेत्र के ज्यादातर अध्याय 5% के स्लैब में आ गए हैं, जिससे निर्यात और घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब सिंथेटिक कपड़ों के व्यापार में ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। उद्योग जगत ने भी इन सुधारों का स्वागत किया है। कपड़ा व्यापारी सुशील गरोड़िया ने मीडिया से कहा कि टैक्स ढांचा सरल होने से व्यापारियों पर बोझ घटेगा और इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा।
सब जगह जीएसटी की रेटे में कुछ न कुछ बदलाव आया है, यान की रेटों में बदलाव आया, तो उससे कपड़ा बाजार पे भी पॉजिटिव असर आने की पूरी संभावना है। तो इन सब चीजों से जो व्यापारियों का जीएसटी रिफंड की भी समस्या आ रही थी, तो वो भी एक मोटा मोटी समस्या काफी हद तक इससे खत्म हो जाएगी। काम का जो बोझ है व्यापारियों का, विवरों का, वो घटेगा, उसके साथ उनको काम करने के लिए समय ज्यादा मिल पाएगा और पब्लिक की जो बचत होगी उससे वो अपनी और अन्य चीजों पे अपना बहुत ज्यादा खर्च कर पाएंगे। तो उससे इकोनॉमी में चारों तरफ से दिवाली का जो मार्केट में बूम आता है वो ऐसा लग रहा है कि दिवाली के पहले ही आना चालू हो जाएगा।
जीएसटी में यह बदलाव भारत की फाइबर न्यूट्रल नीति को मजबूत बनाएगा, जिससे सूती और कृत्रिम दोनों तरह के कपड़ा क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित होगा। अक्षित कुमार वैद्यान के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और कौशल विकास के लिए एक निजी कंपनी के साथ समझौता किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री मांडविया ने रोजगार सृजन को सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों के साथ साझेदारी से न सिर्फ रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे, बल्कि इससे कृषि, सेवा और निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास होगा और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल रोजगार सृजित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर 46 लाख वैकेंसी दर्शाई गई है और इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी नेशनल करियर सर्विस पोर्टल ने ई माइग्रेंट पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन करा है और उसके द्वारा 28 वैकेंसीज ऑलरेडी नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर प्ले हो रही है।
उपराष्ट्रपति पद के लिए कल चुनाव होगा। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस वर्ष जुलाई में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण ये चुनाव आवश्यक हो गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज से नई दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री मांझी का यह दौरा कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले हो रहा है। इस दौरान श्री मांझी के राज्य के भाजपा सांसदों के साथ चर्चा करने और अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार विमर्श में शामिल होने की उम्मीद है। भाजपा की ओडिशा इकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल भी कल से नई दिल्ली में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी की वोट मांगने वाली टिप्पणी की आलोचना की है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कल चुनाव होना है। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में कहा कि एक तरफ श्री रेड्डी देश की आत्मा को बचाने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो भ्रष्टाचार के कई मामलों में दोषी हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ये व्यवहार निंदनीय है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने खोज और तलाशी अभियान के दौरान कल कई उग्रवादी समूहों के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मणिपुर पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों ने मणिपुर के टेंगनोपाल जिले में भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पीएलए के 2 केसीपीएमएफएल और यूएनएलएफ के 1 सदस्य को गिरफ्तार किया। इसके अलावा इम्फाल पश्चिमी जिले से केसीपी अपूर्णवा के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए गए। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कल रात एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि रविवार को सीमा सुरक्षा बल ने चेतावनी देने के बाद घुसपैठिये पर गोलीबारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सिद्धार्थ खान नाम का ये घुसपैठिया पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। उसके पास से पाकिस्तानी मुद्रा बरामद हुई है। पूछताछ जारी है और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के गुड्डर वन क्षेत्र में चल रहे अभियान में एक आतंकवादी मारा गया है। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान में सेना का एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी भी घायल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बाढ़ प्रभावित पंजाब का दौरा कर मौजूदा हालात का जायजा लेंगे। उनकी एक समीक्षा बैठक भी करने की संभावना है। इस बीच रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पंजाब सरकार मुआवजे के लिए नुकसान का आकलन कर रही है और केंद्र सरकार की टीमें भी जायजा ले रही हैं। एक रिपोर्ट।
खेतों और अन्य जगहों पर जमा बाढ़ के पानी के कारण कई इलाके अभी भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। भाखड़ा और पोंग बांधों से अतिरिक्त पानी की नियंत्रित रिहाई भी कुछ हद तक समस्या को बढ़ा रही है। इस बीच मरने वालों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। राज्य भर के 2050 गांवों से 3,87,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्थानीय लोग, गैर सरकारी संगठन, भारतीय सेना, बीएसएफ और एनडीआरएफ की विशेषज्ञ टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मॉनसून की हल्की वर्षा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा के दौर में कमी आने से प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। इस बीच आपदाग्रस्त जिला कुल्लू के मनाली व बंजार उपमंडल में आज और कल सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में अभी भी 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 820 सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि 1,181 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। इसके अलावा 356 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 9 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में अंधड़ और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
मौसम विभाग ने आज उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और कच्छ में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जल्द समाप्त हो जाएगा। श्री ट्रंप ने बताया कि वे इस संबंध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि यूरोपीय नेता भी युद्ध समाप्त करने की रणनीति पर चर्चा के लिए अमरीका आएंगे। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए हैं। लाखों युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज दबाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल के विभिन्न हिस्सों से लोग काठमांडू घाटी के मैती घर मंडला में इकट्ठा हुए और बनेश्वर स्थित नेपाल के राष्ट्रीय सभा भवन की ओर मार्च किया। युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में नेत्रदान के बारे में भ्रांतियां दूर करने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात में उत्कृष्टता हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। नागरिकों से भारत को वैश्विक व्यापार और ज्ञान का केंद्र बनाने का आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भाजपा सांसदों की कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। एनडीए के सहयोगी दलों के सांसद भी इसमें शामिल होंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, रोजगार सृजन सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख स्तंभ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।